हम बहनों से निवेदन करते हैं, श्रेया बहन का स्वागत सम्मान करेंगे, आप सभी तालियों से सम्मान करेंगे। कहते कि पत्थर जो चोट खा के टूट गया वो कंकर हुआ, पत्थर जो चोट खा के टूट गया बिखर गया वो कंकर हुआ, और पत्थर जो चोट खा के सहता रहा वो शंकर बना, वो शंकर बना। लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज देन लाइफ विल गिव यू अ हैप्पीनेस पैकेज, लाइफ विल गिव यू अ हैप्पीनेस पैकेज। तो यही हैप्पीनेस पैकेज दिलाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुई है हमारी डियर डिवाइन सिस्टर श्रेया बहन। कौन कौन श्रेया बहन को जानते हैं? लगभग सभी जानते हैं, तो आप सबने श्रेया बहन को देखा ही है यूट्यूब चैनल में, पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग टीवी चैनल में। आप बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता हैं, बहुत छोटे उम्र में आपकी बहुत अच्छी कीर्ति है, प्रसिद्धि है। आपने वैसे पोस्ट ग्रेजुएट किया है एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी में और इंग्लिश लिटरेचर में। आपकी खासियत है लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, मेडिटेशन, कैसे जीवन को बहुत बहुखूबी तरीके से हम बहुत सुंदर तरीके से खुशी खुशी जी सके, तो इसका बहुत सुंदर आप उदाहरण हो। तो अभी हम आपसे ही सुनेंगे लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज। सो सिस्टर श्रेया।
ओम शांति। आप सभी शांतिवन के कैंपस में पहुंचे हैं और सभी के अंदर बहुत उमंग उत्साह है, सभी बहुत खुश भी हैं। एक लौकिक वातावरण से निकल करके एक अलौकिक वातावरण में आप पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है अच्छा? किस किस को अच्छा लग रहा है, एक बार हाथ खड़ा कर। हाँ, लेकिन फिर भी जीवन एक लंबी यात्रा है। इससे पहले हम अपने घर में थे, इसके बाद भी वापस जाना है, और इस जीवन की लंबी यात्रा में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि काफी बोझ है, भारीपन है, मन पर कई बार बहुत भारीपन जैसा लगता है। लगता है कभी कभी ऐसा भारीपन लगता है? किस किस को लगता है भारीपन है? हाँ, उदासी है, चिंता है, सब कुछ होगा जीवन में, धन है, संपत्ति है, परिवार है, हेल्थ है, फिर भी कभी कभी थोड़ी सी उदासी बनी रहती है, और खास जिस समय अकेले बैठते हैं तो वो खालीपन ज्यादा महसूस होता है, काटने को भी दौड़ता है, होता है ऐसा कि नहीं? तो उस भारीपन को कैसे हम खत्म करें, कैसे हम जब यहां से जाएं तो बहुत हल्के हों, बहुत उड़ते हुए डबल लाइट फरिश्ता हो, उसके लिए हम अभी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक मिनट का साइलेंस लेते हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस चीज का भारीपन है। तो एक मिनट सभी सब तरफ से डिटैच होकर के, आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, चाहें तो खुली रखें, कंफर्टेबल होकर के बैठें, और सिर्फ एक मिनट के लिए आप अपने जीवन को देखें और अपने से बहुत सच्चाई से पूछें कि हम खुश तो रहते हैं लेकिन क्या सदा खुश रहते हैं? ये सवाल अपने से पूछें। जीवन एक यात्रा है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। किसी को धन की समस्या है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इस सबके बीच में भी मेरी जो स्थिति है वो आनंद की रहती है? क्योंकि वही तो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य ही है कि हम सदा खुश रह सके, भगवान को याद कर सके और उस अतीन्द्र सुख का अनुभव कर सके। और अगर वो खुशी नहीं रहती तो उसका क्या कारण है, कौन सा बोझ है, कौन सी चिंताएं हैं जो हमने अभी तक उस सर्वशक्तिवान को सौंपी नहीं है। वो कौन सी बातें जो मन को परेशान करती हैं? क्योंकि जब कारण बल जाता है तो उसका निवारण भी मिल जाता है। तो आज हम सभी एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा जीवन जिसका लक्ष्य है सदा खुश रहना। ओम शांति। ओम शांति। आपको लगता है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए खुशी? किस किस को लगता है जीवन का लक्ष्य खुशी होना चाहिए? अच्छा, पर हम उस खुशी को कहाँ ढूंढते हैं? हम उस खुशी को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। और बाहर इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि अंदर खुशी का अनुभव नहीं होता। कभी कभी भारीपन होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम सोचते हैं बाहर शायद कहीं खुशी होगी, शांति होगी। और जब मन भारी होता है, किसी भी कारण से भारी होता है, तो उस भारी मन को हम हल्का करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं भारी मन को हल्का करने के लिए? अंदर में अच्छा नहीं लग रहा, व्यर्थ चल रहा है, कैसे अपने को डाइवर्ट करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? हाँ, मन को कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। कोई टीवी देखने बैठ जाता है, कोई किसी से फोन पर बात करता है, कोई वॉक करने निकल जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक है कि अंदर में जैसे शरीर है, उसके अंदर कोई दर्द है, कोई बीमारी है, आप ठीक नहीं है, दांत में ही दर्द है। आप टीवी खोल करके बैठ जाओ, जितनी देर आप टीवी के सामने होंगे आपको दांत का दर्द क्या होगा? महसूस नहीं होगा। क्या वो दांत हील हो जाएगा अपने आप? और 2-3 घंटे टीवी देखने के बाद क्या वो दांत का दर्द उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बीमारी जो है उतनी रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इलाज नहीं हुआ ना। तो जब तक इलाज नहीं हुआ और हमने अपने मन को केवल डाइवर्ट किया, जो हम करते हैं, हमारा मन भारी है, हमें पता ही नहीं क्या करना होता है, मन में कितने प्रकार के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उदासी है, निराशा है, चिंता है, हमें समझ नहीं होती क्या करना है। तो जब समझ नहीं होती तो हम किनारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक है किनारा करना, दूसरा है उस चीज का इलाज करना। डाइवर्ट करने से हीलिंग तो नहीं होती ना। हम कितना भी डाइवर्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा भी हो जाएगा कि वो डाइवर्जन भी काम नहीं करता है। आप टीवी के सामने भी बैठे होंगे पर आप बैठ करके भी देख कुछ नहीं रहे, आपका वही चिंतन चल रहा है, होता है ऐसा कि नहीं? आप लोगों के साथ बैठे, आप उनकी बातें सुन ही नहीं रहे क्योंकि आपके चिंतन में ही आप उलझे हुए हैं, उस दर्द में ही उलझे हुए हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो डाइवर्जन था ना, वो भी काम नहीं करता। और इसीलिए आज जो बड़ी बीमारी आजकल फैलती जाती है, लोग कहते हैं मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, बहुत ओवर थिंकिंग है, रात को भी नींद नहीं आती, भगवान में भी मन नहीं लगता, काम में भी मन नहीं लगता। कई लोग आकर कहते बस खुशी नहीं महसूस होती, कुछ भी करें मन को खुशी नहीं मिलती, अच्छा नहीं लगता, कर तो लेते हैं पर जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। तो फिर ऐसा कई बार तो बहुत ही निराश हो जाते हैं, कहीं तो अपने को संभाल लेते हैं, कहीं तो इतने निराश हो जाते हैं कि फिर गलत गलत कदम भी उठा लेते हैं। उठा लेते हैं कि नहीं? दुनिया में आप देखते हैं कि नहीं, कौन सा कदम उठा लेते हैं जब बहुत निराश हो जाते हैं? सुसाइड, तो पहले स्ट्रेस होता है, फिर धीरे धीरे डिप्रेस हो जाते हैं, फिर इतने डिप्रेस हो जाते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, उनको समझ ही नहीं आता और सहन नहीं होता, वो जो अंदर का दुख है दर्द है वो सहन नहीं होता। जब सहन नहीं होता तो समझते हैं जो एक्सट्रीम स्टेप है शायद सुसाइड कमिट कर लेंगे, आपघात कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा वो दर्द। पर आज सुबह के सेशन में आपने सुना कि हम तो शरीर है ही नहीं, सुना ना सुबह के सेशन में, कौन है हम? आत्मा। तो हमने अगर वो सुसाइड कमिट कर भी लिया तो क्या खत्म हुआ? शरीर। और आत्मा फिर क्या करेगी? दूसरा शरीर ले लेगी, और जो हम इस शरीर से भोग रहे थे वो फिर हमें दूसरे से भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा है उसको हमें भोगना तो है ही। लेकिन ये है कि उस चीज को हम भोग रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और दूसरा है कि है कोई सीन लेकिन हम उसको बहुत आनंद से, बहुत खुशी से, बहुत शक्ति से पार कर रहे हैं। वो ताकत हमें मिलती है ज्ञान और भगवान से, वो ताकत हमें ऐसे नहीं आ सकती कि हम ऐसे विघ्न आए और उसको पार कर ले, वो नहीं होता, वो किसी से भी नहीं होता, चाहे वो साधु हो, संत हो, कोई सन्यासी हो, महात्मा हो। वो हर एक क्या कहता है कि वो ज्ञान और भगवान से हमारे अंदर ताकत आ गई, कि बड़ी बात भी आई लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। और इसीलिए एक चीज जो बहुत मन को भारी करती है, मतलब साइंटिस्ट भी इस चीज को बताते हैं कि हमारा जो मन है ना वो 80% टाइम या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। पास्ट की जो बातें हैं वो भूलती नहीं है, और पास्ट की बातों का चिंतन कर करके मन क्या हो जाता है? पास्ट का चिंतन करके क्या होगा? मन दुखी हो जाता है। आपको होता है पास्ट का चिंतन? किस किस को पास्ट की बातें, पुरानी बातें, पुराने कुछ हुआ है पर भूलता ही नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, मेजोरिटी। अब ये एक मुख्य दुख का कारण है। अब हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और वो चीज हमने पकड़ के रखी हुई और वो दुख दे रही है। अब आप मान लो चाहे किसी ने कुछ किया भी, छोटी बात ले लेते हैं, पहले छोटी बात लेते हैं। पास्ट ये नहीं होता कि कुछ बहुत पुराना है, आज सुबह का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, एक महीना पुराना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जो शब्द जो थे वो इंसल्टिंग थे, अपमानजनक थे, किसी ने बोल दिया। अब उन्होंने बोला और मुझे फिर बुरा लग जाता है, फिर हम उन बातों को पकड़ लेते हैं। आप एक बात बताओ, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हमें दुख दे सकता है? देता ही है ना। आपको दुख देते हैं लोग? किस किस को दुख मिलता है बहुत? अपने परिवार से, आसपास वालों से दुख बहुत मिलता है, वो हाथ खड़ा करना। अच्छा अच्छा, तो लोग अपने बोल से हमें दुख दे सकते हैं, मानो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन को हिला सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, वहां कोई खड़ा है, वो हमें कुछ बोलता है, उसके पास पूरा फ्रीडम है, वो वहां खड़े होकर के कुछ भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। और वो जो बोलता है उसके शब्द बहुत अच्छे नहीं है, उसने बोला वो बोल करके चला गया। हमें लगता है कि हमें जो महसूस हो रहा है वो महसूस हो रहा है जो उसने बोला। ऐसे ही लगता है ना हमें, उसने बोला उसके बाद मेरा चिंतन चलना शुरू हुआ और मुझे बहुत दुख का अनुभव हुआ। अब वो तो बोल करके चला गया, एक कॉमेंट्री वहां से आई, दूसरी कहां चलनी शुरू होती है? कहां चलनी शुरू होती है? यहां चलती है कि नहीं चलती? उन्होंने एक लाइन कही, आप कोई काम ठीक से नहीं करते, आपसे तो कुछ भी नहीं होता, आप तो घर का ध्यान भी नहीं रख सकते, आप तो ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कह करके चले जाते। अब उन्होंने कहा मेरा अपमान किया, फिर मैंने उन बातों को पकड़ा और क्या किया, क्या किया? अपने मन में चलाया, चलाया ना, सुना, बोला उन्होंने, उन्होंने बोला, फिर मैंने उसको अपने मन में क्या किया, रिपीट किया, किया। कब तक रिपीट करते हैं हम? कब तक रिपीट करते हैं? हाँ जी, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब जब करते रहते हैं तो फिर ये भी नहीं पता चलता कि वो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब आप देखो, उन्होंने मेरे से एक बार ठीक से बात नहीं करी थी और चले गए, मैंने अपने आप से कितनी बार ठीक से बात नहीं करी? एक है वो मेरे से कैसे बात करते हैं, दूसरा मैं अपने से कैसे बात कर रही हूं। वो मेरे से कैसे बात करते हैं उस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, दुनिया के किसी व्यक्ति पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो मेरे से कैसे बात करते हैं, कहाँ हमारे पर कंट्रोल है। हर व्यक्ति वैसे बात करता है जैसा वो है। अगर कोई गलत तरीके से बात करता है तो वो किसको दर्शा रहा है, आप बताओ किसको दर्शा रहा है। दो जने हैं, एक अपमान कर रहा है, दूसरे का अपमान हो रहा है, आप साक्षी होकर के वो सीन देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, तो जो कर रहा है आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे ना ये कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, ये कोई बात करने का तरीका है, बात करना है तो भी प्यार से करे। माना जो बोल रहा है वो अपने संस्कारों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो हमारे को कुछ नहीं कर रहा होता। जो जैसा होता है वो वैसे ही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, जिसके जो गुण है, सागर का जो गुण है शीतलता देना तो वो शीतलता देगा, अग्नि का जो गुण है गर्माहट देना तो वो गर्माहट देगा। ऐसे हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार है, जिसका जो संस्कार है वो दिखाई देता है, हमें ये भूल जाता है, हम उसकी बातों को पकड़ते हैं, हम कहते उसने ऐसे बोला, सबके सामने बोला, मुझे बोला, कैसे बोला, हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने कभी हमारी महिमा तो करी नहीं और ही हमारा अपमान करते हैं, मेरी तो कोई बोलो बोलो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब ये जितना चलता जाता है ये अंदर में क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है ये अंदर में, दुख। अब आप बताओ दुख उन्होंने दिया कि मैंने क्रिएट किया। आज अगर सामने कोई खड़ा होता और हमें ऐसी भाषा में गाली देता जो भाषा हमें समझ में नहीं आती, एक बार मान लो सामने कोई खड़ा है वो ऐसी भाषा में मेरा अपमान करता जो भाषा मुझे समझ ही नहीं आती, और जब वो भाषा मुझे समझ ही नहीं आती तो सुन करके मेरा कोई चिंतन चलता, चलता ही नहीं। तो वो बोल करके भी चला जाता पर मुझे समझ ही नहीं आया और मेरा चिंतन ही नहीं चला, तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। तो मुझे बुरा उन्होंने जो कहा उस बात का नहीं लगता है, मुझे बुरा लगता है उन्होंने जो कहा फिर उसके बाद मैंने अपने को क्या कहा, उनकी बात का बुरा नहीं लगता। कितने लोग हमें कितना कुछ कह करके चले जाते हैं, हम कहते हैं जाने दो, बोला बोला जाने दो, पर किसी किसी की बात हम क्या करते हैं, किसी किसी की बात हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, शब्द जो है हम पकड़ लेते हैं, फिर हम उसको रिपीट करते हैं। जैसे एक स्क्रैच होता है, आप उस स्क्रैच पर स्क्रैच करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो वो क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा कि नहीं। आप ये बताओ वो घाव किसने बनाया, उन्होंने बनाया कि आपने बनाया, ये अच्छे से पक्का करके जाना है। क्योंकि हम बहुत सारा जीवन दर्द में रहते हैं पर हम उसका ब्लेम किसको करते हैं, सामने वाले को, और हम कहते हैं मैं बेचारा मैं बेचारा, हम एक विक्टिम मोड में रहते हैं। मैं बेचारा नहीं हूं, मैं मेरे मन का मालिक हूं, मैं उसके मन का भी मालिक नहीं हूं, उसके बोल का भी मालिक नहीं हूं, उसके व्यवहार का भी मालिक नहीं हूं। कोई वहां खड़े होकर के गलत बोल सकता है, दुख दे सकता है, वहां पर धोखा भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है वहां खड़े होकर के, तो कोई चीट भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, गुस्सा भी कर सकता है। पर आप बताओ कोई भी, खुद विचार करो इस बात को बहुत शांति से, कोई भी हमारे मन में घुस करके हमारे लिए सोच सकता है, बताइए आप, सोचो इसको, हमारे मन में घुस करके कोई हमारे लिए सोच सकता है, कर सकता है, किसी को लगता है? हमारे मन में जो संकल्प चल रहा है वो किसकी रचना है, किसकी रचना है, वो मेरी। तो वो वहां गलत बोले तो भी मैं सही सोच सकता हूं, हो सकता है ये कि नहीं हो सकता, पहले तो वो वहां गलत बोले पर मैं सही सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता, चॉइस है कि नहीं है, है ना, ये मन है। आप इसमें व्यर्थ भी सोच सकते हो, समर्थ भी सोच सकते हो, आप जो सोचेंगे वो महसूस करेंगे। ये इतनी बड़ी बात है जो हम यहां आकर के सीखते हैं कि परमात्मा ने हमें कहा कि आप अपनी चिंतन की धारा बदल दो तो चिंता का रोग ही मिट जाएगा। कि जो चिंता दुख दर्द का रोग है ना, मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग क्यों है, आप चिंतन की धारा बदल दो तो चिंता का रोग ही मिट जाएगा। लेकिन हमें आदत पड़ गई है गलत सोचने की, अच्छा थोड़ा समय सोचा तो भी ठीक है, लेकिन ये आदत हो जाती है, जब आदत हो जाती है तो ये चलता जाता है चलता जाता है, फिर हमने कहा घाव बन जाता है ना, वो घाव बन जाता है। अब घाव जब हो जाता है तो घाव में तो कुछ करने की बात ही नहीं होती, घाव है आपको, वोंड है, तो किसी ने टच भी कर दिया तो क्या होगा, दुखेगा कि नहीं होगा? टच किया और आपको दर्द होगी, मना कहा, आप अंदर से ऑलरेडी उदास है, आप अंदर से ऑलरेडी परेशान है, तो कोई बड़ी बात चाहिए ही नहीं। किसी ने एक लाइन बोली, कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ, जरा सा किसी ने धक्का दे दिया, जरा सा किसी ने एक लाइन बोल दी, जरा सा इतना सा भी, क्योंकि वुंड है ना, वुंड को तो टच करेंगे और वो दुख करेगा। अब ये वुंड फिजिकल नहीं है, ये वुंड कहां पर है, ये यहां पर मन पर जख्म लगा है। तो पहली बात आज जिम्मेवारी उठाए कि ये जख्म किसने बनाए, ये जख्म किसने बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि उनका व्यवहार सही था, बिल्कुल नहीं कह रहे, अपमान करना कोई सही व्यवहार नहीं होता, झूठ बोलना कोई सही व्यवहार नहीं होता, धोखा देना कोई सही व्यवहार नहीं होता, अत्याचार करना सही व्यवहार नहीं होता, तो उनका बिहेवियर राइट है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका बिहेवियर गलत था, लेकिन उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है, उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है, ऐसे तो होता है ना, जो जैसा बीज बोता है वैसा फल मिलता है। आप देखो अगर कोई गलत बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, बहुत सुंदर बात कहते जब कोई क्रोध कर रहा होता है ना, बुद्धिज्म में कहते हैं कि आप गुस्सा करेंगे उसकी सजा नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि गुस्सा ही अपने आप में सजा है। मानते हैं आप इस बात को, गुस्सा करेंगे उसकी सजा नहीं मिलेगी, गुस्सा ही अपने आप में क्या है, सजा है, क्योंकि जो गुस्सा कर रहा है वो अंदर से। आप लोगों को आता है गुस्सा, आता है आप लोगों को गुस्सा, किस किस को यहां पर गुस्सा आता है? अच्छा, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप अंदर से बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं कि जल रहे होते हैं अंदर में? गुस्सा अग्नि है, परमात्मा कहते हैं लाल पीला हो जाता है वो व्यक्ति अंदर से। अब वो पहले ही इतने दर्द में है, दर्द वाला क्या देगा, दर्द वाला क्या देगा, आप सोच करके देखो, जो दर्द में है वो तो दर्द ही देगा, दुखी व्यक्ति दुख देता है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल, जो अंदर से हर्ट है उसने तो हर्ट ही करना है, चाहे उसके सामने उसका परिवार भी आ जाए, वो परिवार जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसके लिए 8-8 घंटे मेहनत करता है, जिसके लिए धन कमाता है, जिसके लिए सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो दर्द में है तो वो जब उनके सामने आएगा उससे कोई ऐसा बोल निकल जाएगा कि जिनसे सबसे ज्यादा प्यार है ना, जिनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते उनको भी दर्द दे बैठेंगे, क्योंकि है ही अंदर से दर्द में। लेकिन वो दर्द क्रिएट किसने किया, क्रिएट किसने किया, मैंने। अच्छा, अब हील करना है कि पकड़ के रखना है, बताओ क्या करना है, उसको पकड़ना है। कई लोग तो कहते हैं मैं ये बात बोलो, अलग अलग मान्यता होती है लोगों की, कहीं हमें कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं ये बात जीवन भर नहीं बोलूंगा, कहीं तो फिर ऐसे भी होते हैं कि पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं मेरे मरने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब जितना टाइट पकड़ेंगे, जैसे आप ये देखें ये ग्लास है, ठीक है, बहुत हल्का है, हल्का है, लेकिन अगर मुझे इसको ऐसे 30 सेकेंड या एक मिनट पकड़ना हो तो हल्का है, अब मुझे इसको ऐसे एक घंटा पकड़ना हो तो क्या होगा, क्या होगा अगर ये एक घंटा पकड़ना हो, भारी लगेगा। अच्छा मुझे इसको एक दिन पकड़ना हो क्या होगा, बहुत भारी लगेगा, इसका वजन थोड़ी ना बदल रहा है, इसका वजन नहीं बदल रहा है, लेकिन भारी किसको लग रहा है, मुझे, क्योंकि पकड़ा हुआ किसने है, मैंने। और अगर एक महीना पकड़ना पड़े ऐसे तो क्या होगा, तो मेरा हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा, इसको फिर भी कुछ नहीं होगा। आप ये बात समझो, आपने जिसके बारे में पकड़ के रखा है ना, उसको कुछ नहीं होगा, नहीं होता उसको कुछ, क्योंकि कई बार तो उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, उसको बहुत अंदर में लगता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। पकड़ के किसने रखा हुआ है, पकड़ के किसने रखा हुआ है, मैंने। अब आप जितना लंबा समय पकड़ेंगे, पहले मन बीमार होगा, फिर मन के साथ साथ वो वाइब्रेशन किसको जाएगा धीरे धीरे, किसको जाएगा वो धीरे धीरे, बॉडी को। जिनको पकड़ने की बहुत आदत होती है ना पुरानी बातों को, उनको बीमारी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे ब्लॉकेजेस पहले यहां आते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर में आते हैं, फिर शरीर में आते हैं आप सर्जरी आदि कराते हैं, फिर आपको डॉक्टर पहले से ही कह देता है 5-10 साल तो ठीक है, उसके बाद शायद फिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज शरीर से ठीक करी, मन से ठीक नहीं हुई। मन में अभी भी वो संस्कार है पकड़ के रखने का, तो संस्कार नहीं बदलेगा तो वो चीज कभी ठीक ही नहीं होती। फिर वो हेल्थ पर भी आता है, रिश्तों पर भी आता है, और कभी कभी तो अगर किसी को पकड़ने की आदत होती है ना एक को भी घर में, तो आपने देखा घर का वायुमंडल कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है सारे घर का वायुमंडल, हल्का होता है भारी होता है। एक एक भी अगर ऐसा हो ना जिसको बातें पकड़ना, उसी का चिंतन करना, उसी का वर्णन करना, तो फिर घर भी सारा नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। आप अपने घर की सफाई करते हैं? करते हैं ना, रोज करते हैं। हम सारे घर का कचरा एक कोने में जमा करते हैं, तो भी वो कचरा हम रोज बाहर फेंकते हैं, करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो भले एक कोने में पड़ा है तो भी अगर आपने उसको रोज बाहर नहीं फेंका तो धीरे धीरे उससे क्या निकलने लगेगी, स्मेल जो सारे घर में फैल जाएगी। हम घर की रोज सफाई औरों के लिए नहीं करते हैं। अगर औरों के लिए करते तो उसी दिन सफाई करनी चाहिए थी जिस दिन मेहमान आते, पर हम रोज करते हैं ना। हम घर की सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उस स्वच्छ साफ घर में मुझे रहना है। ऐसे ही हम मन की सफाई किस लिए कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? हम आज अगर ये बातें छोड़ते हैं तो हम किसी और के ऊपर एहसान करेंगे कि अपने ऊपर एहसान करेंगे, आप बताओ? उस घर में मुझे रहना है, इस मन के साथ मुझे रहना है। जो गलत सोचता है सबसे ज्यादा दुख उसको होता है, अरे अपने पर रहम करेंगे। भगवान हमें कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बीती सो बिंदी, उसको फुल स्टॉप लगाओ, बीती सो बिंदी। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। एक बहन थी, उसके साथ बचपन में काफी गलत हुआ था, फिजिकल अब्यूज आदि हुआ। अब जब ऐसा किसी के साथ होता है तो उसको बहुत दुख हो जाता है, भगवान से भी नाराज हो जाती है, अंदर ही अंदर उसको लगता है मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ विश्वास नहीं कर सकती, बहुत शेम, बहुत गिल्ट। कई समय बीत गया, बहुत समय बीतने के बाद जैसे वो भी कभी कभी स्पिरिचुअल सेशंस में जाती होगी, उसने सुना और उसको लगा कि नहीं मुझे फॉरगिव करना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि अच्छा जिसने मेरे साथ ऐसा किया था वो घर का फैमिली मेंबर ही था, है ना, एक्सटेंडेड फैमिली में। कई बार ऐसे केसेस फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं, तो वो फैमिली मेंबर ही था। जब जब उसको देखती थी बड़ी नफरत, बड़ा क्रोध, बहुत कुछ होता था। पर फिर बहुत समय जब बीत गया, 10-20 साल बीत गए, ऐसे सुनते सुनते उसको लगा नहीं मुझे उसको फॉरगिव करना चाहिए। तो उसने एक दिन फिर वो जब थे तो उसको कहा बैठ करके, ठीक है जो भी कुछ आपने मेरे साथ किया मैं आपको माफ करती हूं। तो वो उसको देख करके कहता है मैंने क्या किया। तो उसको एकदम उसको समझ नहीं आया कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है मैंने क्या किया, उसने मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा किया कैसे बोल सकता है। तो उसने कहा आपने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया। तो उसको देखकर कहता है अच्छा आपके ऊपर उसका इतना प्रभाव पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी टेक केयर, वो चल गया। और उसको देख करके उसको लगा कि उसने जो किया था तो किया था, वो तो ठीक है जो गलत किया, लेकिन 10-20 साल तक उसने, उस बहन ने वो सोच सोच करके नफरत, क्रोध, गिल्ट, शेम, वो उसने नहीं किया था, वो किसने किया था, उस बहन ने। और उसने कहा उस दिन मेरे पास एक चॉइस थी, उसको ऐसा लग रहा था मैं बेचारी और आज मैं इसको माफ करके कोई बहुत महान बन रही हूं, और उस दिन उसको फील हुआ कि इसको तो कोई रिग्रेट ही नहीं है और इसको तो कोई फीलिंग भी नहीं है। उसने कहा उस दिन मेरे पास चॉइस थी कि इसको जीवन भर बात को पकड़ के रखना है कि यहीं छोड़ करके अपने को फ्री करना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसका व्यवहार ठीक था, आप विश्वास रखें, अगर कोई गलत करता है, कोई चीट करता है, बिट्रे करता है, फिजिकली अब्यूज करता है, आप कर्मों की गुहे गति पर थोड़ा विश्वास रखें। वो ऊपर वाला सब देखता है और जो जैसा करता है फिर कुछ ही समय के बाद वो चीज उसके सामने आ जाती है। पर हमारा वो चीज अंदर में नफरत पकड़ना, दुख पकड़ना, उससे तो हमारा जीवन खराब हो गया। हाँ, फिर भी आपको कुछ गलत होता है बाहर, समझो बड़ी बातें, कभी छोटी बातें होती है, कभी बड़ी बातें होती है, कोई प्रॉपर्टी की बात है, कोई कुछ है, लॉज हमारे लिए बने हुए हैं। जो कानून है, क्यों बने हुए हैं इस समय पर लॉज? इसीलिए तो बने हुए हैं क्योंकि इस समय पर गलत होता है। ये सत्ययुग नहीं है, ये कलयुग है, यहां गलत होता है। तो गलत होता है इसीलिए तो लॉज बने हुए हैं, तो उस लॉ का सहारा उठाना चाहिए। लेकिन एक बहुत फेमस जज ने भी कहा था, और थोड़े समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत फेमस थे फ्रैंक केप्रियो करके, उनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पूरे में, और बहुत रहम दिल थे। उन्होंने कहा, लॉज कैन बी स्ट्रिक्ट बट हार्ट नीड्स टू बी काइंड। वो जज हैं, वो जज होकर के कह रहे हैं कि कानून भले स्ट्रिक्ट हो, लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए, पर अपने दिल को किसी के प्रति नफरत से भरना, क्रोध से भरना, ईर्ष्या से भरना, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ किसका नुकसान है? आपका। तो भले लॉ की मदद ले, लॉ उसको जो सजा देना चाहता है, लॉ भी कभी अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके साथ गलत करूं, तो फिर तो वो हमारा कर्म बन जाएगा, फिर वो कर्म हमारे सामने हमारे भाग्य के रूप में लौट करके आएगा। तो उसने गलत किया तो मैं क्यों गलत करूं? लेकिन हाँ, लॉ अगर उसको कोई पनिशमेंट देता है तो भले, लॉ का तो काम ही है, कानून बना ही हमारे सहयोग के लिए है। लेकिन परमात्मा कहता है मन में हरेक के प्रति बड़ी शुभ भावना होनी चाहिए। मन में तो ऐसा होना चाहिए, जिसने बहुत गलत भी किया ना, इसका भी भला हो, इसके लिए भी दुआएं हैं, इसका भी मंगल हो, ऐसा सोच सकते हैं हम? ऐसा सोच सकते हैं? हाँ ना, किसको लगता है ऐसा कर सकते हैं? अरे वाह, एक बार अपने लिए ताली बजा ले। ये बड़ी चीज है, इजी तो नहीं है। छोटी बातों में इजी होता है, बड़ी में नहीं होता, बड़ी में नहीं होता। कई बार जैसे हम कहीं कहीं केसेस सुनते हैं, किसी का बच्चा कहीं पर गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, वहीं पर शरीर छूट गया, फिर हम कहें उसको माफ करें, मुश्किल लगता है। लेकिन नहीं करेंगे, पकड़ के रखेंगे, अंदर में नफरत रखेंगे, तो भी क्या होगा। एक बहन थी यूएस में, मुस्लिम थी, उसका बेटा था ऐसे 24 साल का। वो बाहर कुछ खरीदने के लिए गया और खाना वगैरह कुछ लेने के लिए गया, और बाहर निकला और वापस आ रहा था सामान खरीद करके, तो वहां पर 3 लड़कों ने उसको पकड़ा, चोरी वोरी करी और उसको वहीं पर मार दिया। ऐसा मारा कि वो मर गया, बहुत बड़ी बात थी, मरी गया वो वहां पर, ऐसा मर्डर ही हो गया उसका। वो पकड़े गए, जो जिन्होंने ऐसा किया था वो पकड़े गए, और उसमें से तो एक माइनर था, माना उसकी उम्र 18 से भी कम थी। और कोर्ट में ये सीन चल रहा था, सब थे, जज ने उसको सजा सुनानी थी, ये माँ भी खड़ी हुई थी वहां पर। और ये माँ उस बच्चे को देख करके कहती है, देखो मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह हमें रोज सिखाता है रहम करना, हम रोज सुनते हैं रहम करो रहम करो, वो रहम का सागर हमें कहता है रहम करो। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे सामने कोई इतना बड़ा पेपर आएगा, इतना बड़ा विघ्न आएगा, लेकिन जब आज आया है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आपसे नफरत भी कर सकती हूँ और मैं आपको माफ भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि नफरत करने से कोई मेरा बेटा वापस आने वाला नहीं है, और वो अगर गया भी है तो ये विधान था, जन्म मरण तो हम कहते हैं ना लिखा होता है, ये तो विधान था, उसके जाने की डेट निश्चित थी, आप कारण बने। लेकिन आज अगर हम आपसे नफरत करते हैं, वो आपको और कमजोर करेगा और ये चीज दोबारा समाज में रिपीट होगी। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कुछ ऐसा करना कि जिससे ये आपकी जो भूल है वो दोबारा समाज में रिपीट ना हो, तो मैंने अपना फर्ज निभाया, इसलिए मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। सीन चल रही थी, सबकी आंखें नम हो गई कोर्ट में। वो जो महिला जिसके बच्चे ने शरीर छोड़ा, वो उस बच्चे की माँ को मिलकर के आई, गले लगाया कि आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी माँ भी बैठी, ये आपकी गलती नहीं है। कानून के अनुसार उसको तो सजा हुई, वो माइनर था तो इसलिए 15 साल की सजा हुई। 15 साल के जब या जितने भी कुछ जो भी उनके कानून के नियम थे उतनी उस बच्चे को सजा हुई। उस सजा के दौरान ये जो माँ थी जिसका बेटे ने शरीर छोड़ा था, वो जब जब मिलने का समय होता था, मास में, दो मास में एक बार, वो जाकर के उसको मिलती थी। मिलकर उसको बार बार कहती थी, जो हो गया सो हो गया, आप भी उसका ये तो आप पश्चाताप कर ही रहे हो जेल की सजा, अब बाहर निकल करके अगर आप एक अच्छा नागरिक बनते हो तो मेरे बेटे का जाना वो जो कारण बना वो सफल हो जाएगा अगर आपकी जीवन बन जाती है। 15 साल तक वो माँ उसको जाती रही, पालना दिया, प्यार दिया, शुभावना दी। उस बच्चे ने जेल से निकलने के बाद कहा, अब ये मेरी माँ है और मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि सदा इसकी सेवा करना। ये सच्ची कहानी है। कोटों में कोई, कोई में कोई की होती है, क्योंकि कोई कोई उस अल्लाह या भगवान या परमात्मा से इतना जुड़ा होता है, हम सब उसको मानते हैं, हम इसे कितनी उसकी मानते हैं। जब वो घड़ी आ जाती है, जब हमारे पास वो चॉइस होती है कि क्रोध करें कि रहम करें, नफरत करें कि माफ करें, जब वो घड़ी आती है, सबके जीवन में आती है, उस समय पर हमारे अंदर कितनी ताकत होती है कि वो जो हमें कहता है हम करें। और आपको क्या लगता है, अगर हम उसके कहने अनुसार चलेंगे तो हमारे साथ कभी गलत हो सकता है? लगता है आपको? जो उसके कहने पर चलता है, जो भगवान के कहने पर, उसकी श्रीमत पर, उसके डायरेक्शन पर चलता है, उसको सिर माथे लेता है कि अपनी बुद्धि नहीं चलाता, ये उसने कहा है इसके अंदर कुछ कल्याण होगा, वो कहता है अपकारी पर उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, जो आपको पत्थर देता है उसको भी आप फूल दो, जो ऐसा कहता है, जो ऐसा कहता है, अगर आप उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो आपको लगता है कि कभी भी हमारे साथ कुछ गलत हो सकता? हो ही नहीं सकता है। पर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, उसकी बातों के ऊपर विश्वास और उसके ऊपर चलने की ताकत, आप देखेंगे भले बातें आएंगे जीवन में पर आपका जो अंदर दिल है ना, उसमें बहुत, जैसे कहेंगे, भारीपन नहीं होगा, अंदर में आपके बहुत हल्कापन होगा। भले वो माता थी, उसने जब ऐसा किया तो अंदर में वो 15 साल नफरत में भी काट सकती थी और वो 15 साल उसने बहुत आराम से भी काटे, बहुत खुशी में भी काटे। तो छोड़ें, आज छोटी मोटी बातें जो हो गई छोड़ें उसको, कि पकड़नी है क्या करना है, छोड़ें, छोड़ दें पक्का इस हॉल के अंदर। अभी अभी अपने से संकल्प करें, देख लें उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उस विघ्न को, जो भी है देखें उसको, तो कहें ये जो भी हुआ इसके पीछे कोई कारण था, वो कुछ पाठ सिखाने आई थी, किसी ने अपमान किया तो वो सहनशील बनाने आई थी, किसी ने धोखा दिया तो वो रहमदिल बनाने आई थी, कोई बहुत बड़ा विघ्न आया तो शायद वो भगवान के समीप लाने के लिए आई थी, तो वो मुझे कुछ दे करके गई है, उसने सुख दिया है, इसलिए जो हुआ सो हुआ। अब उसका चिंतन भी नहीं करना और वर्णन भी नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर कल्याण समाया हुआ था। एक कहानी सुनाते हैं। एक मंत्री था और राजा था, वो एक बार शिकार पर गए, तो जैसे ही राजा शिकार करने लगा तो उससे थोड़ी भूल हो गई, तो वो जो तीर कमान था वो उसको ही लग गया और अंगूठा कट गया। जो मंत्री था वो बहुत, जैसे कहीं, बुद्धिशाली था, तो जैसे उसका अंगूठा कटा तो मंत्री ने कहा, इसमें भी कल्याण है, कल्याण है, ये भी प्रभु की कृपा है, कल्याण है। अब राजा का अंगूठा कट गया और उसी का मंत्री उसको कह रहा है कि इसके अंदर कुछ कल्याण है, तो उसको तो बहुत गुस्सा आया राजा को कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो उसने कहा इसको डाल दो, जेल में डाल दो इसको, मेरा मंत्री होकर के मेरा अंगूठा कटा और कह रहा इसमें कल्याण है, जेल में डाल दो इसको। जैसे ही बोला उसको जेल में डाल दो, तो उसने कहा ये भी प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, कल्याण है, कल्याण है। का मंत्री को कुछ हो गया है, मंत्री का तो दिमाग खिल गया है, इसको जेल में डाल रहे हैं तो भी कहता है कल्याण है। फिर अगली बार दोबारा राजा शिकार पर गया और मंत्री तो साथ में होता है, मंत्री उस दिन था नहीं, जो सेनापति आदि थे वो पीछे रह गए, वो कहीं घने जंगलों में आगे चला गया शिकार के लिए। वहां कोई दूसरा राजा आया हुआ था, तो उसको ऐसा बोला हुआ था किसी ने कि आपके घर में जब संतान होगी तो बलि देनी है। और जैसे इसने इस राजा को देखा तो उसने कहा अरे ये तो महाबली हो जाएगी अगर हम किसी राजा की बलि चढ़ाएंगे, इससे अच्छी तो कोई बलि है ही नहीं, बंदी बना करके इसकी बलि चढ़ा देते हैं। अब जैसे ही उसको पकड़ा और सोचा कि बलि देंगे, तो देखा कि अंगूठा कटा हुआ है, और फिर कहा कि जो चीज खंडित है मना वो परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है तो इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, तो उसको छोड़ दिया। छोड़ा तो राजा को अपने मंत्री की बात याद आ गई कि अरे उसने कहा था कि इसके अंदर भी कल्याण है कल्याण है, तो खुश हो गया कि अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो आज तो गर्दन ही कट जाती। तो एकदम उसको लगा कि हाँ उसकी जो बात थी वो राइट थी। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने जब उसको जेल में डाला तो भी उसने कहा कि इसके अंदर कुछ कल्याण है, अब इसमें क्या कल्याण है वो बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा उसको जेल से बुला कर लाओ। फिर सारी बात उसको सुनाई, मंत्री आज ऐसे ऐसा हुआ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता तो आज गर्दन ही कट जाती, पर तुम्हें जेल में डाला उसमें क्या कल्याण है। तो सारा सुन करके हंसता है, कहता है आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मैं तो मंत्री था आपके साथ होता, आपको छोड़ दिया तो अगला किसको पकड़ते। मैं अगर जेल में नहीं होता तो फिर आपकी जगह किसकी बलि चढ़ जाती, मेरी चढ़ जाती, इसलिए देखो भगवान ने पहले ही मुझे जेल में डाल दिया। ये ना भक्ति की कहानियां होती थी। ये कहानियां सुनने में देखो कितनी अच्छी लगी, आपने ताली भी बजाई, पर ये कहानी किस समय याद आनी चाहिए। हम कोई शिकार पे नहीं जाने वाले, हमारा कोई अंगूठा नहीं कटने वाला, हमारी कोई बलि नहीं चढ़ाने वाला, लेकिन जिस समय कोई हमारा अपमान कर रहा होता है वो ऐसा ही होता है जैसे कोई बलि चढ़ा रहा है, होता है कि नहीं होता है। जब कोई हमारे साथ चीट करता है वो ऐसा ही होता है, पर उस समय वो संकल्प आना कि इसके अंदर भी कुछ बेनिफिट है, ये मेरी टॉलरेंस को बढ़ा रहा है, ये मेरे कंपैशन को बढ़ा रहा है। देखो कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, आती है ना ये लाइन कभी कभी। मतलब जब दुख आता है तो वो किसके नजदीक लेकर जाता है, किसके नजदीक लेकर आता है, और उसी की याद से आपको सच्चा सुख मिल सकता है। वो अलग बात है कि दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में कोई करता नहीं है, पर दुख में होता नहीं है, ये बात आप याद रखना। दुख में याद वही आता है पर उसका सिमरन हो नहीं पाता, क्योंकि दुख में क्या खींचता है हमें, दुख में क्या खींचता है, दुख खींचता है कि घर में बीमार है, धन की समस्या है, आपको बीमारी है, वो खींचती है उस समय, बहुत ज्यादा खींचती है। तो दुख में एक्चुअली उसका सिमरन करना भी चाहे, उसको याद करना भी चाहे, वो होता नहीं है, सुख में होता है। जब सब कुछ ठीक है तो होता है और बहुत अच्छा अनुभव होता है, और अगर उसकी आदत पड़ी भी हो तो दुख में वो नेचुरली याद आता है आपको, फिर वो दुख भासता नहीं है। पर हम क्या करते हैं जब सब कुछ ठीक होता है, जब सब कुछ ठीक होता है तो क्या हो जाते हैं, थोड़े से अलबेले हो जाते हैं। हम कहते हैं ठीक तो है, सब ठीक है, सब ठीक है, और जब कोई जीवन में दुख आता है कोई अच्छा नहीं लगता, होता है ऐसा कि नहीं। उससे आप उस समय कोई कहे चलो शॉपिंग पर चलते हैं, अच्छा लगता है आपको, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, चलो आओ मिल करके बातें करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता आपको। वो सारी चीजें जो आपको पहले सुख दे रही थी, जिसको आप भोग रहे थे, जिससे आपको कोई प्राप्ति हो रही थी, आपको उस समय वो अच्छी नहीं लगती। उस समय क्या अच्छा लगता है, कोई शांति का वायुमंडल हो, कोई अच्छी बातें सुनाए, कोई अच्छा संग हो। इसलिए गांठ बांध लें आज से ही कि जितना आप उसको याद करेंगे, पल पल याद करेंगे, उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएंगे, बढ़ती जाएंगी। कोई भी विघ्न बता करके नहीं आता। कैसे आता है, अचानक, छोटा बड़ा अचानक आता है। अचानक के पेपर में कैसे रहना होता है, मिलिट्री में होता है ना, अचानक युद्ध छिड़ जाती है तो अचानक वाले को हमेशा कैसे रहना होता है? एवर रेडी। और एवर रेडी कौन रह सकता है? वो मिलिट्री में कौन एवर रेडी रह सकते हैं? जिन्होंने कितने सालों की क्या की होती है? ट्रेनिंग। उसके बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, लंबा समय से आपने अपने को उसको याद करने में नहीं लगाया होगा। आप सोचे उस समय पर वो याद आ जाए, वो नहीं होता है। इसलिए जितना हम उसको याद करते हैं ना, क्योंकि मैं आपको कहूंगी भी कि आप छोड़ दो, आप मान लेंगे, आज आप सच में इस बात को यहाँ हॉल में छोड़ करके जाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी याद से अपने को प्यार से भरेंगे नहीं, वो बात फिर वापस आ जाएंगे। बहुत लोग हमें क्या कहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम हॉल में छोड़ कर जाते हैं, लेकिन फिर दो चार दिन के बाद वो बातें वापस आ जाती हैं। क्यों? आपने दर्द को छोड़ा पर प्यार से भरा नहीं। और प्यार तो, निस्वार्थ प्यार तो कोई मनुष्य दे नहीं सकता। आप कितना भी ट्राई कर लें, है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई दुनिया में जो निस्वार्थ प्यार कर सके। हर एक का कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो तो कहता है मेरे से लो, सबको दो। क्यों आप, ऐसा हाथ किसका होता है? ऐसा हाथ किसका होता है? देखा है आपने किसका होता है ऐसा हाथ? भिखारी का। ऐसा हाथ किसका होता है? देवता का। कैसा वाला चाहिए? देवता माना देने वाला, देवता माना देने वाला, भिखारी माना लेने वाला। हम जैसे किसी रिश्तों में जाते हैं, है ना, परिवार में भी, तो हम क्या, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हमें सामने वाले से क्या चाहिए होता है? प्यार चाहिए, और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए? बोलते जाए, परिवार में क्या चाहिए होता है? कोई मुझे समझे, अंडरस्टैंड करे, तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपनापन चाहिए, कोई मुझे समझे चाहिए, कोई मेरे से प्यार से बात करे, तो सब कुछ, सब कुछ चाहिए। तो हाथ कैसा है? हाथ कैसा है? इसलिए भगवान हमें कहता है आप ना रॉयल भिखारी हो। वो कैसे हैं? क्योंकि इसमें ना हमें लगता है ये क्या बड़ी बात है, ये तो नेचुरल सी बात है, पर मांग ही तो रहे हैं ना। आज बिजनेस भी करते हैं तो लेन देन होती है, कुछ मैंने दिया, कुछ उसने दिया, लेन देन है। रिश्ते में तो सिर्फ क्या रह गया? रिश्ते में क्या रह गया? चाहिए चाहिए चाहिए। ये भी नहीं रुक करके देख रहे कि जिससे चाहिए उसके पास है भी कि नहीं। ये तो ऐसे कि कभी किसी का दिवाला निकला हो और उसके पास जाकर कहो पर मुझे चाहिए तो धन आपसे ही, लोन तो मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मेरे पास होना तो चाहिए ना आपको देने के लिए। तो ये भी नहीं देख रहे कि उसके पास है कि नहीं। और कभी कभी परिवार में सारे ही ऐसे खड़े होता है, ऐसा कि नहीं होता, सारे ऐसे खड़े। अब किसी के पास भी जब है नहीं देने के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, और क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ही तो होगा ना। आर्ग्यूमेंट का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन, उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, फिर झगड़ा, फिर गुस्सा होता है। एक्चुअली रिश्ता ऐसा नहीं होता, बिजनेस लेन देन होती है। रिश्तों का पर्पस क्या होता है? रिश्तों का क्यों होता है पर्पस? बिजनेस में हम लेन देन करते हैं, रिश्तों का पर्पस क्या होता है? सिर्फ देना देना और देना। और जो देने वाला है उसको कहते हैं देवता, और जिसको सदा देना है उसको कहां से लेना पड़ेगा? कोई सोर्स तो चाहिए ना लेने के लिए। आपको अगर देना है तो कहां से लेना पड़ेगा? तो जो वहां से लेता है ना, उसका हाथ कभी ऐसा होता ही नहीं है। उसका हाथ सदा कैसे होता है? देने, भरा हुआ है, भरपूर है। बर्तन खाली होता है ना, बड़ा आवाज करता है, थोड़ा बड़ा हुआ आवाज करता है। जो भरा हुआ होता है भरपूर, चेहरे से संतुष्टता, रूहानियत, प्योरिटी कहां से मिला? अब जब देने वाला लुटा रहा है तो ले लो ना, क्यों फिर यहां पर हमें किसी से लेने की जरूरत है? पर आदत पड़ गई है यहां से लेने की, आदत डाली नहीं है वहां से लेने की, डाली नहीं है वो आदत, विधि नहीं पता, लेने की आदत नहीं है, तो फिर यहां एक्सपेक्टेशन रहती है। इसलिए एक चीज जो बोझ का कारण है, पुरानी बातें। जितना आप छोड़ेंगे, आज तो करें पुराना सारा, लेकिन एक आदत बनाए रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने साथ बैठें और देखें आपने किसी को दुख तो नहीं दिया या आपने किसी से दुख तो नहीं लिया। इतनी सी परमात्मा हमें चेकिंग करने के लिए कहता है, इतनी सी, आपने किसी को दुख तो नहीं दिया और आपने किसी से दुख लिया तो नहीं। दुख दिया है तो क्या करें, हो जाता है, अभी परफेक्ट बने नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। मैंने किसी को बोल दिया, मैंने किसी के साथ गलत कर लिया, मैंने कुछ इच्छा में आकर अनएथिकल कर लिया, हो गया मेरे से। अब चेकिंग करनी, अवेयरनेस आई, मैंने गलत किया, अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दे दिया मैंने किसी को दुख, क्या करें, माफी मांगे, किससे, ऊपर वाले से नहीं, वो बड़ा इजी है, गॉड फॉरगिव मी, वो तो कर ही देता है फॉरगिव, वो तो है ही प्यार का सागर। किससे मांगनी होती है माफी, जिसको दुख दिया है। बीच में क्या आ जाता है, बीच में क्या आता है, अभिमान। हमारी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि, बड़ा सुंदर कहती थी, कहती है आप लोग पता नहीं हार्मनी इन रिलेशनशिप पे क्या घंटा घंटा भाषण करते हो। कहती थी हार्मनी क्या होता है, एक ने हार मानी हो गई हार्मनी। रिश्तों में एक ने हार मानी हो गई हार्मनी, और क्या है। परमात्मा कहता है देखो अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं महानता है। हमारे अपने हैं वो, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। आज आप उनकी बातें पकड़ के रखोगे, अचानक शरीर छूट जाता है, पीछे पश्चाताप रह जाता है, मैंने इससे बात नहीं करी, मैंने इसको दुख दिया, मुझे ये बोलना था मैं बोल नहीं पाया। कितने लोग हैं, कितने लोग, बड़े बड़े लोग भी आकर के कहते हैं मुझे बस ये रिग्रेट है कि मुझे उनको ये कहना था मैं कह नहीं पाया, बस मैं ये कह देता और वो चले जाते ना तो कोई हर्जा नहीं था, उनके जाने का मुझे दुख नहीं है, पर मैं ये कह नहीं पाया ना मुझे उस चीज का दुख है, तो रिग्रेट, पश्चाताप होता है। आज यहां से जाने के बाद जिसको जो कहना है ना कह दे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कह दे। कोई पेरेंट है, कोई बच्चा है, किसी से बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो कि अंदर में रिग्रेट रह जाए, नहीं पता चलता कि हम कल रहेंगे या वो कल रहेंगे, ऐसा समय चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। अचानक सब कुछ क्या हो रहा है, अचानक। अगर आपकी भूल है, आपकी भूल नहीं है तो हर्जा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम सॉरी भी बोलते हैं तो भी सामने वाला नहीं ठीक होता है, पकड़ के रखता है, कोई बात नहीं, अब वो तो वो कमजोर आत्मा है, उसने पकड़ा हुआ है, हम फिर भी भगवान की सकाश उसको देते हैं, दुआएं देते हैं, गुड विशेस देते हैं कि उसकी भी हीलिंग हो जाए, फिर वो भी छोड़ देता है, पर कभी कभी उसमें समय लगता है, ठीक है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं कर, मेरा अभिमान है, तो जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है, और जो ऐसे खड़े होकर रहता है ना बिल्कुल अभिमान की तरह, फिर क्या होता है, फिर थोड़ा भी तूफान आता है वो गिर जाता है। देखिए बड़े बड़े पेड़ जो अभिमान की तरह खड़े रहते हैं, तूफान आता है गिर जाता है, वो घास होती है, जैसे तूफान आया इधर तो इधर बेंड हो गई, इधर तो इधर बेंड हो गई, कहीं भी बेंड हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो अपने ही है, अगर ऐसा लगता है तो ये स्थान ही ऐसा होता है, ये स्थान आपको बल देता है, आध्यात्मिकता बल देती है बातों को छोड़ने की, गलत किया है तो झुकने की। क्योंकि फिर देखो रिग्रेट बहुत सफरिंग होती है, कई बार सफरिंग ना सिर्फ बाहर की नहीं होती है कि कोई बाहर से कोई विघ्न आता है, कई लोग हैं उनको बाहर का कोई विघ्न नहीं है, अंदर में खालीपन और बेचैनी बहुत है, अंदर में उनको चैन सुख नहीं है। बाहर देखने वाले कहते हैं कि सब कुछ तो है, इनके पास रुपया है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, पढ़ाई है, अच्छा घर है, मकान है, गाड़ी है, पर उनको सुख नहीं है। अब उनको वो सुख क्यों नहीं है, अंदर में कोई रिग्रेट है, वो रिग्रेट बहुत सफरिंग और भोगना क्रिएट करती है। तो इसलिए ऐसा भी अगर कुछ लगता है, ये बात याद रखने में कोई बुराई नहीं होती कि हम किसी भी समय मर सकते हैं। लोगों को मरने का बहुत डर लगता है, पर सच्चाई तो ये है ना कि हम कभी भी मर सकते हैं। मर सकते कि नहीं मर सकते, हो सकता है कि नहीं हो सकता? किस किस को लगता है कि उनका शरीर जो है वो अविनाशी है? अविनाशी, आप कभी मरने वाले नहीं है, वो हाथ उठाओ। देख लो जरा चारों तरफ, देखो इधर उधर देखो, आप लोग देखो सबके, किसी का हाथ अगर खड़ा हो उसको जाके पूछना राज क्या है। तो जो मिला है वो छूटना है, शरीर मिला है, पोजीशन मिली है, वो सब छूटना है। साथ क्या जाएगा? साथ क्या जाएगा? हमारा पुण्य साथ में जाएगा, हमारे संस्कार साथ में जाएंगे। तो इसीलिए वो भारीपन को साथ थोड़ी ना लेकर जाना है, भारीपन साथ में जाता है। आप ये मानना, बैगेज नर्स देख के बता देती है, ये बच्चा मुस्कुराता रहता है, ये बच्चा सारा दिन रोता रहता है। वो माँ भी कह देती है, कहती ये बच्चा तो रोना बंद ही नहीं करता। मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास एक भाई जी है, उनके पास कोई आया था, तो वो माँ अपने बच्चे को लेकर के आई थी और वो कह रही थी कि ये जो बच्चा है ये 6 महीने से रोता ही रहता है, डॉक्टर सब परेशान हो गए, 6 महीना, और कहा कि केवल इसको सुलाने के लिए भी इंजेक्शन देना पड़ता है, और जब इंजेक्शन देते हैं तो ही ये चुप होकर के थोड़ी देर चुप होता है और सोता है, बाकी तो ये रोता ही रहता है। और कहा अब तो हमारी बस एक ही आश है, अंदर में बस एक ही संकल्प है, इसका शरीर छूट जाए। खुद ऐसे बोलते थे, हमसे देखा ही नहीं जाता हमारा बच्चा इतना भोगता है। तो वो क्या हो गया, कुछ ना कुछ था जो कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, और कैरी फॉरवर्ड होने के कारण आगे भी जब वो आत्मा गई तो वो उस दुख का क्या कर रही थी, अनुभव कर रही थी उस चीज को। तो इसलिए वो नर्स कहती है ये सारा दिन हंसता रहता है, ये सारा दिन रोता रहता है, ये वो संस्कार दिखाई देते हैं। तो आज ये बहुत अच्छा मौका है, लेटिंग गो ऑफ इनर बैगेज, इस बैगेज को तो छोड़ करके जाएं। और एक पास्ट है और दूसरा जो बोझ होता है वो कौन सा है, फ्यूचर का। तो कई लोगों को फ्यूचर का सोच सोच करके क्या होती है, बहुत क्या होती है, चिंता। आप लोगों को चिंता होती है? किस किस को चिंता होती है, किस किस को चिंता होती है? इधर उधर नहीं देखो, आपको होती है तो हाथ उठाओ। अच्छा, चिंता होती है। किस चीज की चिंता होती है, किस चीज की चिंता होती है? वो कहते हैं वो किसका है ना, कि चिंता ताकि कीजिए अनहोनी जो होए, है ना, उस चीज की चिंता करे अगर कुछ अनहोनी होती है। अनहोनी होनी नहीं है, होना वो ही है जो निश्चित है, तो फिर किस चीज की चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक स्वभाव बन जाता है चिंता का भविष्य को लेकर। अब चिंता क्या होता है, क्या होगा भविष्य में, क्या होगा, अनसर्टनिटी का एनवायरमेंट है, सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी सर्टन नहीं है। जॉब सिनेरियो देखो तो सर्टन नहीं है, अचानक आप जाते हैं, आपको कहते हैं हम डाउन साइज कर रहे हैं कंपनी को, ले ऑफ कर रहे हैं, किसी की भी अचानक नौकरी छूट जाती, हो रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है। भाई जी ये वाली लाइट बंद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत कुछ होता रहता है, तो इसलिए हमें भी अंदर में चिंता होती है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। चिंता भी अंदर में बोझ क्रिएट करती है, करती है कि नहीं करती है। क्या करना चाहिए ऐसे में, है तो अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है और हो भी रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। चिंता के संकल्प कैसे होते हैं, चिंता के संकल्प कैसे होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, बेचैनी एंजाइटी से होती है कि नहीं। अब इसमें देखो, भले अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है, उसकी तैयारी करनी होती है। जैसे बारिश का मौसम होता है, तो बारिश नहीं भी हो रही होती तो भी हम घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, छतरी लेकर निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो जब हम छतरी लेकर के निकलते हैं तो कोई हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो क्यों छतरी लेकर के निकल रहे हो। हमें पता है कि मौसम किसका है, बारिश का, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो समझदारी किसके अंदर है कि हम छतरी लेकर के जाएं, वो समझदारी एक प्रेपरेशन है। आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, जाते हैं ना कभी कभी हम, तो हम हमें पता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो हमेशा चेक करते हैं कि हमारी कार में क्या चेक करते हैं, पेट्रोल है, स्पेयर टायर है, करते हैं कि नहीं करते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम कोई आह्वान थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी का पंचर होगा, पर हमें पता है कि इतनी लंबी यात्रा है तो हो सकता है, तो हम तैयारी करके रखते हैं। हम जीवन में बहुत चीजों की तैयारी करके रखते हैं, ऐसे ही ये समय अनसर्टिनिटी का है, अनसर्टिनिटी का है। जब अनसर्टेन समय होता है तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक होता है उसकी तैयारी करना और दूसरा होता है तैयारी नहीं करी। बारिश है, मैंने छतरी भी नहीं ले जानी, रेनकोट भी नहीं लेना, लेकिन अंदर में संकल्प करते रहना है कहीं, बोलो, बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। वो होगी भी नहीं, पर हम सोच सोच करके खाली हो जाएंगे। व्यर्थ चिंतन है ना, तो सोच सोच करके आप खाली हो जाएंगे। पर अगर आपने ली होगी छतरी तो आपको एक भी संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि आपको है होगी तो ठीक है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सिमिलरली इन टूडे सिनारियो थिंग्स कैन हैपन। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जॉब जाती है। अब हम कई आजकल ऐसे केसेस देखते हैं, हमारे पास कोई आते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब जॉब जाती है, लिटरली डिप्रेशन में होते हैं। कहते हैं, क्यों आप डिप्रेशन में गए? तो मेरी जॉब चली गई। जॉब तो बहुतों की जाती है। सिनारियो जब ऐसा है और उसमें किसी कंपनी में 200 की गई, किसी में 800 की गई, किसी में 1000 गई, क्या सब डिप्रेशन में गए थे? ऐसा होता है? माना जॉब गई है तो हम डिप्रेशन में जाना निश्चित है, ऐसा है कि किसी किसी के साथ ऐसा होता है? बताइए, किसी किसी के साथ होता है कि ये होता ही है, ऐसा नेचुरल है कि जॉब जाएगी तो डिप्रेशन तो होगा ही। किसी किसी के साथ होता है, क्यों? जैसे ये टेबल है, इसमें अगर अभी हम 4 जनों को बुलाएं उठाने के लिए तो ये सबको सेम लगेगा कि अलग लगेगा? आप बताइए, जब ये सब उठाएंगे तो इसका जो सब उठाएंगे तो सबको इसका वजन सेम लगेगा कि अलग लगेगा? अलग लगेगा। किसी को ये बहुत भारी लगेगा, किसी को हल्का लगेगा, हो सकता है ऐसा कि नहीं? किसको भारी लगेगा, किसको हल्का लगेगा और किसको भारी लगेगा? कौन सी स्ट्रेंथ है यहां पर? वो आए उठाने के लिए, किसी ने उठाया बड़ा हल्का है, किसी ने उठाया ये तो बहुत भारी है। एक ही चीज है, उसका वेट उतना ही है, लेकिन किसी को हल्का लग रहा है, किसी को भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या डिफरेंट है? हाँ जी, शरीर की शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है। तो जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको ये कैसा लगेगा? हल्का। जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है उसको कैसा लगेगा? भारी। ऐसा ही होता है ना, आपने स्टेशन पर कूली देखे, देखे कूली कितना सामान उठा लेते हैं, ठीक है, 4 बैग 5 बैग, कौन फास्ट चलता है, हम कि वो? है ना अनुभवी, वो इतना सामान उठा के भी इतना फास्ट चलता है कि हमें उसके पीछे चलना पड़ता है, होता है कि नहीं? क्यों? उसकी क्या ज्यादा है हमारे से? फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसे ही जब कोई बात आती है, समझो जॉब छूटी, एक बात है, उसमें कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बिल्कुल ठीक रहता है। कोई कहता है एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खुल जाएगा। कोई कहता है कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, इसके अंदर भी कुछ कल्याण होगा। अब ये फर्क क्यों है? एक ही सीन के अंदर एक डिप्रेशन में जा रहा है और एक बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि दोनों की क्या चीज अलग है? क्या अलग है दोनों के? थॉट्स। थॉट्स कहाँ चल रहे हैं? मन में। तो दोनों की क्या अलग है? क्यों सोच अलग है? कौन सी स्ट्रेंथ अलग है यहां पर दोनों की? मानसिक। जिसकी मानसिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी, इनर पावर जितनी ज्यादा होगी, मन की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, उसको वो बात उतनी छोटी लगेगी। एक नर्स मिली थी हमें, एम्स हॉस्पिटल है ना, उसमें वो नर्स काम करती है। तो कहा कि एक पेशेंट हमारे पास आया एक्सीडेंट वाला, और एक्सीडेंट के बाद उसका बस इतना हिस्सा चल रहा था, नीचे का सारा पैरालाइज हो गया था। तो कहा कि वो कोई हमारे लिए अनयूजुअल बात नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल में है, आए दिन केसेस आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो ये कोई अनयूजुअल नहीं था कि उसका नीचे का पैरालिसिस हो गया। पर कहते जब भी हम नर्स उसको कोई दवाई देने जाते थे, उसको पूछने के लिए जाते थे आप कैसे हो, कहते सब ठीक है, बढ़िया है, मैं थोड़े समय में चलने लग जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और कहा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, जो बाकी पेशेंट्स भी थे, वो वार्ड ऐसा था जिसमें किसी का हाथ पैरालाइज है, किसी का पैर पैरालाइज है, ऐसे अलग अलग था, उनको भी कहते थे कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बड़ा उमंग था। और कहा 6-7 महीने के बाद वो ठीक हो गए और चल करके घर पर गए। लगे 6-7 महीने लगे, तो कहती उस दिन उस नर्स ने कहा, उस दिन मैंने समझ लिया कि जिसने ठान लिया और जो अंदर से टूटा नहीं, उसके लिए कोई तूफान तूफान नहीं है, वो पार कर ही लेता है, वो कर ही लेगा, उसके लिए वो किस्मत को भी बदल देगा। क्योंकि किस्मत भी कैसे बनती है, संकल्प से सृष्टि बदलती है। अगर उसने संकल्प ही व्यर्थ नहीं होने दिया तो उसकी वो सृष्टि, उसकी वो किस्मत भी जो है वो बदल देगी। लेकिन अगर वो सिर्फ क्या रहा, समर्थ। हम में से मेजोरिटी छोटी छोटी बातों में भी क्या हो जाती है, ये तो कितनी बड़ी बात है। वो एम्स की नर्स थी जिसने सुनाया, क्योंकि लोग देखते हैं अपने साथ, और हमारे साथ तो थोड़ी बहुत तबीयत भी ऊपर नीचे हो जाए, हो जाता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उस समय पर भी बात आई है, पर मन की शक्ति थी ना, मन ने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो ठीक होते होते वाइब्रेशन शरीर को मिला, बॉडी के हर सेल तक आपका वाइब्रेशन पहुंचता है, हर सेल तक। डॉक्टर कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे ले, अगर आपका मन शक्तिशाली नहीं है तो कई बार बीमारी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, क्या कहते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स, गॉड क्योर्स, हील दाई सेल्फ। हीलिंग खुद को करनी पड़ती है, हील दाई सेल्फ। अगर आप खुद उस चीज को समर्थ नहीं होते, पॉजिटिव नहीं होते, तो बॉडी की हीलिंग रुक जाती है या स्लो हो जाती है। वही जो उसको 6 साल लगते थे वो 6 महीने में हो गया, और कभी कभी जो 6 महीने में हो सकता है वो 6 साल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी थॉट इज अफेक्टिंग द सेल ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करता है। तो इसलिए परमात्मा एक लाइन कहता है हमें, लिख लीजिए घर में, कभी कभी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होनी चाहिए। हमारा घर अच्छी अच्छी लाइनों से भरा होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे थॉट्स लगे हुए हैं, देखें आपने, आप पढ़ते हैं चलते फिरते, किस किस ने पढ़े हैं कहीं पर भी जब लगे होते हैं, अच्छा आप जैसे पढ़ते हैं, केवल आपने पढ़ा और आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों बहुत अच्छा लगा, क्यों बहुत अच्छा लगा, आपकी चिंतन की धारा बदल गई। आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, आपने कुछ पढ़ा और यहां उसका चिंतन चला, आपको सुकून मिला, आपको ताकत मिली, आपको हिम्मत मिली। ऐसे अच्छी अच्छी लाइनें सब जगह लिखी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी जो कह रही थी कि परमात्मा हमें कहता है, कोई भी तूफान आए ना, अपने को बोलो ये तूफान नहीं है, ये तोहफा है, आगे बढ़ने का साधन है। ये तूफान नहीं है, उस तूफान को क्या समझो, आप अपने जीवन में भी देख लो, जब जब कोई विघ्न आता है चला जाता है, अनुभवी बनाकर जाता है कि नहीं, बनाकर जाता है अनुभवी कि नहीं, अनुभवी भी बनाकर जाता है, इनर पावर को बढ़ा करके जाता है, भगवान के समीप लेकर के आता है। तो वो तूफान था कि तोहफा था, था ना तोहफा वो। लेकिन उस समय याद रहना कि ये क्या था, उस समय याद रहना ये क्या था, ये तोहफा है, आगे बढ़ने का साधन है, बाद में नहीं, उस समय। देखो बाद में क्या होता है, जीवन की हर बात आएगी और चली जाएगी, रहती नहीं है कोई बात, ये नियम है। बातें बादल की तरह होती है, आती है और चली जाती है, कोई नहीं रहती, सदा रह ही नहीं सकती, वो नियम ही नहीं है। कोई 1 महीने की होगी, 1 साल की होगी, 6 साल की होगी, जो भी है, पर वो चली जाती है। लेकिन पीछे क्या रह जाता है, उस समय का अनुभव। और अगर उस समय का अनुभव दर्द का था, भय का था, चाहे वो बात समझो 1 महीने की थी, लेकिन वो बात जाने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि बात जाने के बाद आपको डर अंदर में लगेगा कि ये मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। तो बात पूरी होने के बाद भी क्या फायदा हुआ। एक भाई था कोविड के दिनों में, वो कोविड उसको हुआ तो हॉस्पिटल में 21 दिन रहना पड़ा। अब जब वो 21 दिन था, उसके बच्चे थे छोटे, परिवार था, अकेला, आपको तो पता ही है कोविड के दिनों में तो बड़ा जैसे दर्द की बात थी। तो 21 दिन वो कहता है 21 दिन में अकेला था अपने साथ, तो मन वही सोचता रहा, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इनका कौन इनको पढ़ाएंगा, वो चिंतन चलता रहा। बहुत दर्द, बहुत दुख, बहुत बहुत उसने एक्सपीरियंस किया। और कहता वो जो आईसीयू में मशीनें थी तो उसकी वो बीप वो बजती रहती थी, तो वो भी अंदर में जैसे उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। मना कहीं भी वो बीप बचे तो नींद में भी अभी वही सुनाई देती है। खैर उसने 20-21 दिन जितने दिन वो हॉस्पिटल में था यही सोचता रहा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा क्या होगा, बहुत चिंता। लेकिन बच गया, वो ठीक होकर के आ गया। अब वो ठीक होकर के आ गया, बात आई और चली गई, वो फिजिकली बिल्कुल ठीक हो गया। पर वो उस जब वो हमें मिला था उस बात को 1 साल हो गए थे, लेकिन 1 साल के बाद भी वो मन से ठीक नहीं था। उसके जीवन का विघ्न कितने दिन का था, 21 दिन का। पर वो 1 साल के बाद भी मिला तो बहुत एंशियस, एंजाइटी, इसको अंदर में बहुत डर से, क्या हुआ भैया अभी तो सब पूरा हो गया ना। कहते मेरे को हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ कुछ हो ना जाए। अब क्योंकि वो उतने दिन एक्सपीरियंस जो था वो बहुत दुख का था ना, तो वो ठीक हो गया उसके बाद भी उसको वो दुख और भय उसका जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए बाद में कहना कि उस चीज के अंदर कुछ कल्याण था उससे फायदा नहीं है। लेकिन वो जब पेपर चल रहा है, वो जब जो भी कोई बीमारी का है, घर में कोई बीमार है, आप बीमार हैं, कोई फाइनेंशियल पेपर है, कोई फिजिकल कुछ भी है, आप उस समय अपने को रोज कहें ये तूफान नहीं है, ये तोहफा है, ये आगे बढ़ाने का साधन है, ये इसमें कुछ राज समाये, ये मुझे आगे बढ़ाएगा। आप बार बार अपने को ये कहेंगे ना तो आप चिंता में नहीं जाएंगे, दर्द में नहीं जाएंगे, आपको शक्ति हिम्मत रहेंगी, वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप कहेंगे बात आई, बात चली गई, मुझे महसूस नहीं हुई, आई थी। लोग कहेंगे अरे इतना बड़ा बात थी, इतनी बड़ी बात थी। आप कहेंगे हाँ थी तो, पर मुझे इतनी फील नहीं हुई, मुझे इतना महसूस नहीं हुआ। ये होती है उसकी शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति है कि बात आई और चली गई। वो हमें कहता है बात आए बात जाए, खुशी नहीं जाए, बात आएगी बात चली जाएगी, लेकिन बच्चे किसी भी हालत में आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी भगवान की गिफ्ट है आपको, ये उसका उपहार है। किसी से बहुत प्यार हो और वो आपको कोई गिफ्ट दे तो आप कैसे रखेंगे उसको, बताओ कैसे रखेंगे, संभाल के रखेंगे नहीं। वो हमें गिफ्ट देता है, हम हर छोटी बात में उसको छोड़ देते हैं और छोड़ करके कहते हैं ऐसा हुआ था, इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसा किया था, और हम अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। तो आप अपने मन को शक्तिशाली बनाने की मेहनत करें। ये सच बात है कि ये बहुत अनसर्टेन पीरियड है, अनसर्टेन पीरियड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भी उसके सामने अर्जी डाले ना मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो, तो वो कहते ये तो है ही दुखधाम। दुख धाम में क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख तो आएंगे। ये तो ऐसा है कि आप सड़क पर निकले गाड़ी चलाने के लिए और आपने कहा इस सड़क पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं हो, ट्रैफिक ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब बारिश के सीजन में बारिश हो सकती है तो दुख धाम में और कलयुग में बातें आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है कि नहीं आ सकती। इतना अपने को शक्तिशाली बना ले कि बात आए लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़े। बात आना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रभाव पड़ जाना बड़ी बात है। बात आई और आप थोड़े से डिटैच थे, आपकी स्थिति श्रेष्ठ थी, बात आकर के चली गई, नो प्रॉब्लम। बातें तो किसके जीवन में नहीं आती। आप मुझे संसार में एक ऐसा ढूंढ करके दिखा दे, एक कोई महात्मा, सन्यासी, धर्मात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धनवान, मिलियनियर, बिलियनियर, कोई जो कह दे कि मेरे जीवन में कभी कोई बात नहीं आई, मिलेगा आपको कोई, मिलेगा कोई, पर आपको खुश लोग मिलेंगे, आपको मिलेंगे खुश लोग। वो खुश इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, वो खुश इसलिए है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं भी है लेकिन वो ठीक है। इसलिए वो खुश हैं क्योंकि वो ठीक है, और क्योंकि वो ठीक है तो उन बातों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो यहां जब आप घूमे ना, तो जो अच्छी लाइन आपको लगे, जो सेशन में लगे, लिखते जाइए, फिर उसका छोटा छोटा स्लोगन बना करके अपने घर में चारों तरफ लगा दीजिए। आपके घर में जो नहीं भी ज्ञान में चलते, नहीं भी आध्यात्मिकता में चलते, वो भी जब पढ़ेंगे, घर में कोई बच्चा पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको पढ़ करके क्या मिलेगा? उसको पढ़ करके बल मिलेगा। हमें बल चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, और इसीलिए अगर आपको मन को शक्तिशाली बनाना है, जैसे तन को अगर शक्तिशाली बनाना है, तो दो चीजें कौन सी चाहिए होती है? जो बॉडी को हेल्दी बनाना है तो डॉक्टर क्या कहता है, दो चीजें कौन सी? हाँ जी, फूड और एक्सरसाइज, यही है ना। कितना परसेंट फूड और कितना परसेंट एक्सरसाइज, कितना परसेंट फूड और कितना परसेंट एक्सरसाइज होता है? 100% में से ज्यादा किसकी परसेंटेज होती है? फूड की। 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज। डाइट अगर ठीक होगी तो बॉडी अपने आप हेल्दी होने लगेगी। मन का भोजन क्या है? मन का भोजन क्या है? विचार नहीं है। विचार अच्छे तब चलेंगे जब आप मन को अच्छा भोजन खिलाएंगे, वो अपने आप अच्छे चलने लगेंगे। देखो, आप व्यर्थ को ऐसे नहीं खत्म कर सकते, जैसे आप अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते, आप अंधेरे को, आप लाइट ऑन कर दो तो अंधेरा खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। यू कांट रिमूव डार्कनेस, पर अगर आप लाइट जला दोगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। आप व्यर्थ को खत्म नहीं कर सकते, आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकते। यू कैन ट्रांसफॉर्म, आप जो वेस्ट है, जो भी नेगेटिव है, उसको क्या कर सकते हो? परिवर्तन। जैसे हमने अभी कहा कि हम उसको तूफान भी देख सकते हैं, हम उसको तोहफा भी देख सकते हैं, हम क्रोध भी कर सकते हैं, हम रहम भी कर सकते हैं, पर ये समर्थ मेरे मन में चलना कब शुरू होगा? भोजन क्या है मन का? आज दिन भर से आपके संकल्प कैसे चल रहे हैं? थोड़ा आपको लगता है चेंज है थॉट में? किस किस को लग रहा है मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होता जा रहा है, वो हाथ खड़ा करना। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने अच्छा सुनना शुरू किया, बस यही है। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना आपकी चिंतन की धारा को बदल देगा। आप चार दिन अच्छा सुनेंगे, चार दिन अच्छा चिंतन चलेगा, पांचवें दिन थोड़ा कम होगा, दसवें दिन तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे ये बातें वही अच्छी हैं आश्रम में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करती। ये हर बात प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। आप घर में चार पांच लोग रहते हैं, जब ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे हजार हजार लोग संगठन में साथ में रहते हैं, संगठन में काम करते हैं, आपको लगता है बातें नहीं आती होंगी? सारे सेम थोड़ी ना है, हर एक की मतें अलग है, संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन एक ही चीज है, जो भी हम सभी हैं वो रोज आप देख भी लेना, जब आप सुबह सेशन में आते हो, एवरीबडी जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है, एक ही चेंज है, वो रोज, चाहे वो किसी भी सिटी में रहता है, किसी भी शहर में रहता है, किसी भी देश में रहता है, वो सुबह एक तो अमृत वेला करेगा, जो आपने किया ना आज, आधा पौना घंटा भगवान से जुड़ करके शक्ति लेगा, और दूसरा वो एक घंटा ज्ञान सुनता है रोज। मना ये उस दिन नहीं जिस दिन विघ्न आता है, ये रोज। परमात्मा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, कर सकते हैं? तो वो रोज एक घंटा पढ़ते हैं, परमात्मा पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ते 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 हमारी चिंतन की धारा कब बदल जाती है हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता कि वो कब हो गया। अच्छा सुनना शुरू किया, गलत सुनना पढ़ना देखना कट कर दिया, क्योंकि आप जो आजकल देखें, चाहे वो सिनेमा है, वो न्यूज है, आजकल तो सिनेमा में भी कितना वायलेंस है। कोई डायरेक्टर पिछले दिनों मिला था, डायरेक्टर, वो कहता है कि अभी वही फिल्म सक्सेसफुल होती हैं जिसके अंदर या तो लस्ट हो या वायलेंस हो, नहीं तो वो फिल्म चलती नहीं है। और पहले जो वायलेंस था वो विलेन करता था, तो हम कहते थे ये गलत है। अब की फिल्म में वायलेंस कौन करता है? कौन करता है? हीरो। तो हमें लगता है ये तो राइट है। तो इतना सब जब हम गलत देखते हैं तो हमें यही नहीं समझ में आता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसलिए रोज ज्ञान सुनना, अच्छी बातें सुनना, आध्यात्मिक बातें सुनना, ये आपकी बुद्धि को क्लीन करती है। बुद्धि डिसीजन ले पाती है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और फिर वो जो मेडिटेशन है, 30% एक्सरसाइज, मेडिटेशन माना आत्मा परमात्मा से जुड़े, अपने अंदर शक्ति भरे। इससे कल मॉर्निंग का सेशन जो है परमात्मा की पहचान, और परसों मॉर्निंग का जो सेशन है उससे जुड़ने की विधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों आप बहुत ध्यान से सुनना। वो विधि सीख करके जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपका मन शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि अच्छा सुन रहे हैं, उससे शक्ति भर रहे हैं। आप विश्वास रखें, यही जीवन जो मेहनत का लगता है, यही जीवन मौज का बन जाएगा। ये परिवर्तन आता है। कहते लोगों भगवान को याद करने से क्या होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, भगवान को याद करने से क्या होगा, विघ्न दूर हो जाएगा। भगवान को याद करने से वो जो मेहनत लग रही है ना, वो मौज में बदल जाएगी। वो जो दुख हो रहा है ना, वो आपका सुख में बदल जाएगा। वो जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। वो जो अंदर में बेचैनी है वो चैन में बदल जाएगी। और उसके बाद तो फिर बात का आपको बात लगेंगे नहीं। ठीक है, अभी हम 2-3 मिनट उसको याद करें, मेडिटेशन करें, छोड़े यहां पर। पक्का? जिसको जो कहना है आज कह देंगे, डिनर से पहले ही कह देना, डिनर के बाद भी मन बदल जाता है। कभी कभी जितना समय बीतता जाता है ना, तो मन बदल जाता है। वैसे तो यहाँ का भोजन भी इतना सात्विक है, कहते जैसा अन्न वैसा मन, तो वो भोजन भी शक्ति देता है, क्योंकि वो भोजन थोड़ी ना है, वो तो प्रसाद है, तो वो भी शक्ति देता है, संघ भी शक्ति देता है, वायुमंडल भी शक्ति देता है, ज्ञान भी शक्ति देता है। इसलिए जो यहाँ करना है कर लेना। और वहां नियमित रूप से अगर आप जाएंगे, सेंटर्स पर रोज सुनेंगे, तो ये बल आपका बना रहेगा। तो अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते, कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों ओर से समेटे। और अपने को याद दिलाएं कि जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है, जो खुशी से बितानी है। सिर्फ जीना नहीं है, लेकिन आनंद में जीना है, और उस खुशी को औरों के साथ बांटना है। इसलिए आज अपने पर रहम करें, अगर कोई भी पुरानी बात आज तक भी पकड़ कर रखी है तो अपने को समझाएं कि मेरा नुकसान कर रही है। आज लेट को करें, इस दिल से दर्द को विदाई दें। इस दिल में उस भगवान को जगह दें जो दिल को आराम देने वाला है, मिनट के लिए और बैठेंगे, अपने दिल को साफ करें, अपने दिल में भगवान के प्यार को समाएं। अगर हम दर्द में होंगे तो उस प्यार के सागर के प्यार को कैसे महसूस करेंगे? पुरानी बातों को विदाई दे, अपने को माफ कर, उस प्यार के सागर के साथ अपना रिश्ता जोड़े। वो आपसे बहुत प्यार करता है, मदद करना चाहता है, लेकिन हिम्मत का पहला कदम तो उठाएं। हिम्मत का एक कदम हमारा और हजार गुना मदद परमात्मा की। उसकी याद से अपने मन को शक्तिशाली बनाए। पास्ट का चिंतन करने के बजाय भविष्य की चिंता करने के बजाय उसकी याद का चिंतन करें। निश्चय रखें हमारे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। कभी भगवान के बच्चों के साथ भी गलत हो सकता है, ये तो हमारी नादानी है जो हम ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है कि आज हम उसके घर में बैठे हैं, सत्य को सुन रहे हैं, भाग्य को बदल रहे हैं। इसलिए दिल से उसका शुक्रिया करें और सदा साथ रहने का वायदा करें। जब भगवान हमारा साथी है तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, सब कल्याणकारी है। इसलिए निश्चिंत रहकर मौज में अपना जीवन बिताए। ओम शांति।
ओम शांति। आज के सत्र का यही है सार। सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम बट डोंट लिव विद द प्रॉब्लम। तो आज की शाम से एक नई बात हो, राइट? एक नई बात। बाधाओं से सीखे, तूफानों से तोहफा ले ले, सिर्फ जिए नहीं बल्कि आनंद से जिए, यही नई शुरुआत हो। तो कौन कौन तैयार है ऐसी नई शुरुआत के लिए कि जीवन आनंद से जिए? तो यही हमारा धन्यवाद रहेगा श्रेया बहन के लिए कि प्रैक्टिकल में हम आनंद से जिए। तो आनंद वाली तालियां बजाइए।